Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। लगातार संबंधों पे हमारी चर्चा हो रही है कि परमात्मा हमारी माता, पिता, बंधु, सखा सब कुछ हैं और वो अपना सब कुछ हमें देना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद को। शायद इसलिए क्योंकि हम कहीं और एंगेज्ड हैं, या फिर शायद इसलिए कि हमने अपने आप को बहुत ठूस ठूस के भर लिया है पुरानी दुनिया की बातों से। इसीलिए स्वच्छता की कल बात हो रही थी कि हम अंदर सफाई करें, तब जाके शायद हम रिसीव कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। इसी के संदर्भ में एक बहुत सुंदर बोध कथा है कि एक संत जी भिक्षा लेने के लिए गए, एक मकान के सामने खड़े हो गए और कहा, भिक्षाम देहि। घर की स्वामिनी बाहर आई और उन्होंने भिक्षा दी। भिक्षा देने के पश्चात उन्होंने कहा कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए। तो संत ने कहा कि मैं कल आपको उपदेश दूंगा। दूसरे दिन पुनः चूंकि संत आने वाले थे भिक्षा लेने के लिए, तो महिला ने बहुत अच्छी खीर बनाई उनके लिए। दूसरे दिन फिर से संत आए और भिक्षाम देही कहा। महिला कटोरा ली और उसमें खीर डाला और फिर भिक्षा देने के लिए बाहर आई। जैसे उन्होंने उनके कमंडल में खीर डालना चाहा, देखा कि कमंडल में तो कचरा भरा हुआ है, गोबर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराज अपना कमंडल मुझे दीजिए, पहले मैं इसे स्वच्छ कर देती हूँ, उसके पश्चात इसमें मैं खीर डालूंगी। संत ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इसी में डाल दो खीर। गृहस्वामिनी ने कहा कि यदि मैं खीर इसमें डाल दूंगी तब तो ये पूरा खीर ही खराब हो जाएगा, आप खा भी नहीं पाएंगे। तो संत जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जैसे इस पात्र में गोबर है, कचरा है और इसमें तुम खीर डाल दोगी तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा और ये खाने योग्य नहीं होगा, वैसे ही जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कचरा है, गंदगी है, मैल है, उसमें यदि मैं उपदेश का अमृत भी डालूंगा तो शायद वो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए पहले अपने अंदर की सफाई करो, जब अंदर स्वच्छ हो जाएगा तब तुम्हें जो उपदेश दिया जाएगा उसे तुम ग्रहण कर पाओगे। मित्रों, कितनी सार्थक बात है कि अंदर यदि गंदगी है, मैल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, तो शायद अच्छी बातें हम सुनते भी हैं लेकिन उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है और फिर से हम ज्यों के त्यों हो जाते हैं, पर नाला वहीं का वहीं बहता रहता है। इसीलिए आवश्यक है कि अंदर की सफाई हो, पश्चात सुंदर बातें हमारे जीवन में आएंगी और जीवन भी खूबसूरत होता जाएगा। इसी की बात कल भ्राता जी कह रहे थे कि अंदर जो हमारा पात्र है, बुद्धि रूपी पात्र, वो स्वच्छ होना चाहिए। इसी सुंदर बात के साथ आइए आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। प्रता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
इस बोध कथा के साथ साथ मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहूंगा। सफाई कर लें पश्चात सुने उपदेश, या सुनते जाएं पश्चात सफाई होती जाएगी?
देखिए, पहले उपदेश सुनना होता है क्योंकि ये उपदेश दिया जाएगा कि सफाई कैसे करें। उपदेश माना है ट्रेनिंग दी जाएगी कि अंदर में क्या रखें और क्या निकाल दें। मान लो किसी के मन में उसने दो चार लोगों के लिए वैर भाव रखा हुआ है, अभी उसे भी आभास होता है कि मेरे मन में वैर भाव है जो मुझे अशांत कर रहा है, लेकिन वो कैसे निकाले ये उसे आता नहीं। इसके लिए कुछ शिक्षाओं की जरूरत होती है, इसलिए शिक्षाएं लेते चलें, सफाई करते चलें और जो जो सफाई होती जाएगी शिक्षाएं धारण होती जाएंगी, पर ये ध्यान दें कि हमें सफाई करनी है।
बिल्कुल, मतलब सुनना आवश्यक है तभी ये सफाई होती चली जाएगी। तो सफाई हो जाए उसके बाद हम सुने, इसका इंतजार करने की बजाय हम सुनते चलें अच्छी बातों को और पश्चात सफाई हमारी होती चलेगी।
कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो किसी पात्र में गंदा पानी है
जी,
उसमें ऊपर से स्वच्छ पानी खोल दिया जाए तो धीरे धीरे सारा पानी स्वच्छ हो जाएगा। तो अच्छी बातें सुनते सुनते जो गंदगी अंदर भरी है वो भी आप ही भी समाप्त हो जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रता जी, अभी विशेष करके हमारे देश में भी एक सफाई अभियान हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने चलवाई हुई है और जगह जगह लोग झाड़ू लेके निकल पड़े हैं। हमारे कई केंद्रीय मंत्री भी सफाई अभियान में शामिल हो गए हैं। तो ये जो बाहरी स्वच्छता का जो अभियान राष्ट्रीय स्तर पे चला है, कितना अच्छा होता यदि अंदर की भी सफाई का राष्ट्रीय स्तर पे एक अभियान चल जाता।
बस वो हम चलाएंगे। देखिए, नेता लोग भी एक अच्छा कार्य करते हैं और अच्छा है, बाहरी सफाई का असर मन पे भी पड़ता है। अमेरिका में जाएं, ब्रिटेन, जर्मनी,
कहीं कोई कचरा दिखाई नहीं देता,
साफ, कोई थूकेगा ही नहीं रास्तों में। तो उनकी ये कल्चर बन गई है, उनकी एजुकेशन बन गई है। हमारे देश में ये नहीं है, हमारे यहाँ भी आश्रम में लोग आते हैं, अच्छी जगह पे थूकते रहते हैं। तो सफाई बहुत अच्छी चीज है, और यदि मन की सफाई कर ली जाए तो ये बाह्य सफाई की ओर भी हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि जिसका मन स्वच्छ होगा वो बाहरी गंदगी को देख नहीं पाएगा। तो क्यों ना हम एक अभियान शुरू कर दें कि हम अपने मन को भी स्वच्छ करें। मन में जो दूसरों के लिए मैल भर गया है, मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना भर गई है, उसको जरा हटा दें तो हमारा अंतर चित्त भी बहुत सुखी हो।
अंदर झाड़ू लगाना और अंदर जो कचरे बहुत गहराई से बैठ गए हैं उसे निकालना,
साधना के बिना ये कचरा साफ नहीं होता, क्योंकि ये स्थूल नहीं है। इसके लिए ज्ञान भी चाहिए, तो राजयोग की साधना भी चाहिए, अपने पे बहुत अटेंशन भी चाहिए, उसी तरह की शिक्षाएं भी चाहिए। सब चीजें साथ चलेगी तो मनुष्य का ये मन मंदिर स्वच्छ होगा।
क्या सारे दिन में कुछ ऐसा अभ्यास ब्राता जी कर लेना चाहिए, या कोई भी एक छोटी सी बात आज के नुस्खे के तौर पे प्रदान करें, ताकि बाहरी सफाई के साथ अंदर की सफाई भी होती रहे।
बस सारा दिन ये संकल्प करें, मैं पूर्वज हूँ और मुझे सबको देना है, अच्छाई देनी है, बुराई नहीं।
जी जी जी। और यदि कोई बुरा भी मेरे साथ करता है
तो उसे भी हमें अच्छाई देनी है, क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम दाता हैं।
परम सद्गुरु के तौर पे तो उन्हें याद करते हैं और वो सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। एक विशेष बात, उसके बाद हम अगले संबंध पे चलेंगे। सद्गुरु के लिए आता है कि उसकी हम शरण लेते हैं, शरणागति की बात आती है कि परमात्मा की हम शरण में आए, परम सद्गुरु की हम शरण में आए। और गीता में भी ये जो महावाक्य परमात्मा का है कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तिस्यामि मा शुचः, तो इसका यथार्थ भाव क्या लिया जाए? शरण में आने का क्या भाव है? क्या अपने आप को पूरी तरह तन से भी अर्पित कर देना और सारी मन बुद्धि से अर्पित कर देना, या कुछ और भी भाव है जिससे हम मुक्त हो सके?
शरण में आने का भाव है कि हम उसके बच्चे बन जाएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करने लगे। शरण में कोई छोटा बड़े की आ जाता है तो बड़े की जिम्मेदारी होती है उसको सुरक्षा देना, उसकी पालना करना
जी।
तो हम भी परमात्मा के बन जाएं और अपने को अर्पित कर दें, तो उसका बन जाना और उसको अर्पित हो जाना, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे हम शरणागति हो गए। तो बस फिर उसकी जिम्मेदारी हो गई, वो हमें सब कुछ देगा। और परम सद्गुरु को शरणागति यदि हम हो गए तो वो हमारे भंडारे भरपूर कर देता है।
बिल्कुल। तो ये एक शरण लेने का भाव ये हो जाता है कि अपना लें दिल से, और साथ ही उनकी फिर कृपा और आशीर्वाद के हम पात्र बन जाएं। प्रति जी, कई भक्त ऐसे रहे हैं जिन्होंने दास भाव रखा है परमात्मा के लिए कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे मालिक हैं, या बंदा भाव कह लें कि आप मालिक और मैं बंदा हूँ। तो क्या ये भी भाव संबंधों से जुड़ा हुआ है, या इस भाव से ऊपर कहीं उठने की?
दास से मालिक का कोई संबंध नहीं होता है, वो तो मालिक ऑर्डर करेगा, दास को फॉलो करना है, वो दासत्व है। और भक्ति में इसका महत्व ये रहा, उसके अंदर हमेशा निरंकारिता की फीलिंग्स रहे, इसके लिए लोगों ने अपने को दास समझ लिया कि हम अपने को बहुत छोटा समझेंगे शायद तभी हम बहुत ऊपर उठ सकेंगे। परंतु बात है बच्चा बन जाने की, संबंध जोड़ने। देखिए कितनी बड़ी बात है, किसी घर में नौकर काम कर रहे हो दो, उनका अलग महत्व होता है, वो काम भी उसी ढंग से करते हैं और उनको मिलता भी उसी ढंग से है। और उसी परिवार में नाता किसी बड़े आदमी से जुड़ गया हो तो जिससे नाता जुड़ेगा और जिनका जुड़ेगा उनकी बात कुछ और होगी। तो हमारा नाता भी भगवान से जुड़ गया, अपने में ही ये द मैटर ऑफ ग्रेट प्राउड, गर्व है ये बहुत बड़ा, और इसको अभिमान नहीं कहा जाता, ये बड़े स्वमान की बात है कि हमारा संबंधी भगवान है। तो सर्व संबंध भी उससे इसीलिए जोड़े जाते हैं, साधना के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को भिन्न भिन्न संबंधों का मोह, अटैचमेंट अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसमें वो साधक लिप्त हो जाता है और उसकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है, जिस लक्ष्य से वो आगे बढ़ा था उसको वो प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा अपने सब नाते मेरे से जोड़ो, मैं तुम्हें हर नाते का सुख देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही। तो इसी बात को याद रखते हुए, ताकि हमारा अटैचमेंट भी देह के नातों से छूट जाए और परमात्मा में हमारी संपूर्ण लगन लग जाए, प्यार हमारा बटा हुआ न हो, ये सर्व संबंधों की बात आती है।
लता जी, जो श्लोक मैं कह रहा था उसमें एक बात आती है जिसपे कई लोगों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है कि सर्व धर्मानि परित्यज्य, कि सभी धर्मों को तुम छोड़ के जब मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। इसका अलग अलग व्याख्या, अलग अलग जो टिप्पणीकार है उन्होंने की है, यथार्थ भाव क्या है?
स्वयं भगवान ने जो इसकी व्याख्या की है वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ
जी।
ये जो भिन्न भिन्न धर्म हैं, ये ऐसे समझ लो कि हर एक को एक दायरे में बंद कर दिया है धर्म के, तुम्हें इस दायरे से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें यही करना है, ये नहीं करना है। और ये धर्म आजकल बंधन बन चुके हैं, ये देह के धर्म हो गए हैं और इससे सोल कॉन्शियसनेस मनुष्य की समाप्त हो गई है। तो भगवान ने ये आदेश दिया कि इन सब से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है, न सिख है, आत्मा तो आत्मा है। तो जब हम आत्मा हो जाते हैं यानी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तब ये बंधनों की दीवारें टूट जाती हैं और तभी हमारा परमात्मा से सच्चा मिलन होता है, तभी उसमें हमें परमानंद की अनुभूति होती है। ये इसकी सिंपल व्याख्या है।
कई बार जब धर्म छोड़ने की बात आती है ब्राता जी, तो मोटे तौर पे ही लोग इसका अर्थ समझते हैं कि शायद यदि मैं फलाने धर्म को मानता हूँ कि तो इस धर्म को छोड़ के ईश्वर की शरण आऊं, तो ये वाला जो भाव मोटे अर्थों का लेते हैं तो शायद ये भाव नहीं है।
ये भाव नहीं है। जिस धर्म में कोई है, मान लो कोई मुस्लिम है
जी,
उसका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है, ओके ये तो हुआ ही है, इसको कोई कैसे इग्नोर करेगा, कैसे कहेगा कि नहीं हुआ है। अब वो देहभान को भूलकर मैं तो रूह हूँ, फिर रूहानी बाप के पास आए तो उसको दिव्य अनुभूति होगी। धर्म में तो वो अपने में ही रहे लेकिन वो हुआ देह का धर्म, वो रूह के रूहानी धर्म में स्थित हो जाए तो ये बहुत ऊंची बात हो जाएगी।
बिल्कुल। और ये सभी पापों से मुक्त कर देने वाली जो बात है भ्राता जी, क्या केवल उनकी शरण में आ जाने से ही हमें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है या उनकी शरण में आके भी कुछ पुरुषार्थ करना?
शरण में उनकी आ गए तो जो वो कहें वो हमें करना होता है। उनकी शरण में जाते ही वो हमें आदेश करते हैं कि अपना मन बुद्धि मेरे में लगाओ। तो ये लगाने से जिसको राजयोग कहा गया है हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं।
बिल्कुल प्रता जी, एक विशेष संबंध जो और आता है वो है पुत्र का संबंध, कि हम परमात्मा को अपना बच्चा भी बना सकते हैं। सुनने में बड़ा ही अच्छा लगता है लेकिन कैसे करें, वो वाली एक बात फिर से प्रश्न के रूप में आ जाती है, क्योंकि जब शास्त्रों में हम सुना करते थे तो अनुसुईया जी ने भी उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार किया था या वो संबंध निभाया था, यशोदा माँ तो फिर प्रख्यात हैं ही, यदि हम परमात्मा से ये पुत्र का नाता निभाना चाहते हैं कैसे करें?
निभा सकते हैं। देखिए उधर भी दिखाया कि देवकी को कृष्ण के जन्म से पहले साक्षात्कार हो रहा है सब कुछ और वो देख रही है कि विष्णु से उसने क्या मांगा था और विष्णु स्वयं उनके गर्भ में पुत्र बनकर आ रहा है। इस बात से वो आनंदित है लेकिन वो भुला देता है उनको कि भूल जाएं ताकि ये मुझे पुत्र का स्नेह दे सकें। फिर दिखाया यशोदा को भी, जब वो मिट्टी खा रहा था, का मुँह खोलो तो देखा उसके मुँह में तो तीनों लोक का गोला घूम रहा है, तो यशोदा बस वहीं ध्यान मगन हो गई, अरे मेरा पुत्र और भगवान है वो, तो मैं भगवान को जन्म देने वाली, पालना देने वाली हूँ। तो वास्तव में मेरे पास हंसी की बात है, माताएं आती हैं कई, हमको बच्चा नहीं है, मैं कहता हूँ कि भगवान तुम्हारा बच्चा बनने के लिए तैयार है, अब तक तो देहधारी बच्चे तुमने पैदा किए, उनकी तुम माँ बनी, भगवान की माँ बन के देखो जरा। वैसे तो वो सब के माता पिता हैं पर वो तैयार है कि तुम मुझे अपना पुत्र बनाओ और तुम बन जाओ मेरी माँ। तो माताएं खुश हो जाती हैं, बना ले हम भगवान को अपना बच्चा और अपने वो कर्तव्य निभाएं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए निभाती है, तो ये वही बच्चा होगा जो हमारी सदगति करेगा। जैसे हिंदू धर्म में तो मान्यता है ना कि पुत्र न हो तो अग्नि कौन देगा अंत में चिता को, और जब अग्नि देने वाला नहीं होगा तो उससे उसकी सदगति नहीं होगी,
और अग्नि के बाद भी कई क्रियाकांड ऐसे हैं जो पुत्र ही करता है।
अभी जिनको पुत्र नहीं है क्या उनकी सदगति नहीं होती? और कईयों के पुत्र ऐसे हैं जो देते ही नहीं अग्नि, जो पीछे काम ही नहीं करते, वो कहते बूढ़ा मर गया तो मर गया, ठीक है हम मुक्त हुए उससे,
पुत्रियां अग्नि,
पुत्रियां अग्नि देती हैं। तो वास्तव में भगवान को यदि हम बच्चा बना लें तो वो हमारी सदगति कर देता है, वो यहाँ भी हमें काम आएगा, यहाँ भी हमारी सेवा करेगा, मृत्यु के समय भी हमें पलकों पर बैठा कर ऊपर ले जाएगा और मृत्यु के बाद दे देगा सदगति, तो तीनों काल सुंदर हो जाएंगे।
जी प्रताप जी, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि परमात्मा ही हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो और ये सारी जो क्रिया जो एक पुत्र करता है वो परमात्मा करें, लेकिन ये कैसे संभव हो? क्योंकि जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि स्थूल में कोई होता है तो बड़ा सहज हो जाता है, हमने उसे नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया तो वो एक पुत्र की फीलिंग आएगी, गोद में ले लिया, हम उसे घुमाने ले जा रहे हैं, परमात्मा के साथ ये सब कैसे किया जाए?
श्री कृष्ण के रूप में भी कई अच्छे भक्तों ने बाल रूप में उसको अपना बच्चा बनाया, ऐसे थोड़े से उदाहरण हैं कि वो पहले उसको खिलाते थे, उसको अपने पास सुलाते थे, उसे बच्चे जैसा ही प्यार करते थे, जैसे माँ बच्चे से बात करती है वो उससे वैसे ही बात करते थे। परमात्मा ब्रह्मा के रूप में हमें ये अनुभूति देता है, तो ब्रह्मा के सूक्ष्म रूप में हम उसे बच्चा बना के गोद में ले लें, उसे वैसा ही प्यार करें, गले लगा लें, उसको पास सुलाएं, उसको खिलाएं पिलाएं, उसको उसे बात करें, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी सुंदर अनुभवों की।
मतलब ये किया जाए ब्रह्मा के तन के माध्यम से, लेकिन हाँ, वो तो बुजुर्ग तन में है।
हाँ, उसको सूक्ष्म रूप में बना लिया जाए, क्योंकि कभी वो भी तो छोटे थे ना, श्री कृष्ण बड़ा होता है, उसके बाल रूप को बना लिया जाता है
जी।
तो उसके बाल रूप को छोटे रूप को बना लिया जाए, और वैसे भी जो सूक्ष्म शरीर में है वो संकल्प से ही बड़ा और छोटा होता है
जी।
हम संकल्प से ही उसे बड़ा और छोटा बनाकर उससे वो अनुभूति करें
जी। भ्राता जी, बात फिर कर्तव्यों की भी आती है, एक दूसरे के प्रति दायित्वों की आती है, क्योंकि जहाँ कहीं संबंध है वहाँ एक दूसरे के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है, दायित्व जुड़े हुए होते हैं, तो पुत्र के संबंध से फिर हमारा क्या दायित्व बन जाता है ताकि हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो, गहराई तक हमारे अंदर समाए?
असली बात यही है, एक जगह का मैं अनुभव सुनाऊं, माताओं का बहुत अच्छा प्रोग्राम था, 1000 माताएं थी, मैंने सबसे पूछा कि कौन कौन बाबा को अपना बच्चा बनाएंगी, सब ने हाथ उठाया, आज से शिव बाबा हमारा बच्चा हो गया, क्योंकि शिव बाबा को बच्चा बनाना सस्ता काम है, तो ठीक है बना दिया, हमने कुछ क्लास भी कराई। अगले दिन माताएं फिर आई, मैंने पूछा शिव बाबा किस किस का बच्चा, सब ने हाथ उठाया। फिर मैंने पूछा रात को अपने बच्चे को भोजन किस किस ने खिलाया था, अब माताएं कोई मुझे देखे कोई अपनी पड़ोसियों को देखे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि बच्चे को भोजन भी खिलाना है क्या, मैं कहा बच्चा सारी रात माँ माँ करते बेचारा रोता रहा होगा, कहेगा अच्छी मम्मी मिली, ये तो आप खा गई मुझे भूखा ही छोड़ दिया, सारी रात रुला दिया उसने, वो प्यार कैसे करेगा आपको, अपनी माँ कैसे मानेगा। तो मुख्य बात यही है कि हमें कर्तव्य पालन भी करना होता है, और हमारे यहाँ भी कुछ माताएं हैं जिन्होंने बाबा को अपना बच्चा बनाया है, तो वो उनके लिए वस्त्र भी बनवाती हैं, वो उन्हें रोज भोग भी खिलाती हैं, वो उन्हें अपने साथ सुलाती हैं, उसी तरह प्यार करती हैं और उसी तरह का नाता रखती हैं, बहुत अच्छा ये अनुभव होता है सब जगह, लेकिन इसमें चाहिए संपूर्ण भावना और विश्वास,
इनके साथ ही शायद वो अनुभूति का भाव आ पाएगा। जैसे आपने भोजन की बात कही, तब तो जैसे एक छोटा बच्चा लगातार अपनी माँ के साथ ही चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, और माँ भी भले कहीं पे भी हो बार बार जाती रहती है, देखती रहती है कि बच्चा ठीक ठाक तो है, सोया है या खेल रहा है, तो शायद इसी प्रकार से सारे दिन इस भाव को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। क्या इसमें मेहनत है भ्राता जी या थोड़ी सी अटेंशन की बात है?
ये बहुत सरल है और ये निरंतर योग युक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है। जैसे आपने कहा बच्चा तो माँ के साथ चिपका ही रहेगा, माँ भी जब तक उसे 10-20 बार न देख ले माँ को भी तृप्ति नहीं होगी, चाहे वो काम में बिजी हो फिर उसे देखेगी, सो भी रहा हो फिर भी जाके उसे देखेगी, उसका चेहरा देख के वो तृप्त होती है। बाबा को सच्चे मन से प्यार से यदि हम बच्चा बना लें और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगें, तो हम निरंतर योग युक्त बन जाएंगे और ये अनुभव हो जाएगा जब उसे बुलाया वो हमारे सामने है, वो आज्ञाकारी बच्चा भी है, हम उसके आज्ञाकारी बच्चे बने या ना बने, पर जब उसको बच्चा बनाते हैं तो बहुत आज्ञाकारी होता है और पूरा नाता निभाता है।
बिल्कुल प्रताप जी, कई ऐसी माताएं हैं जिनके फोन कॉल या ईमेल हमारे पास लगातार आते रहे हैं जिनकी संतान नहीं है, आपने जिक्र तो किया है, फिर मैं थोड़ा सा चाहूंगा इस पे विस्तार। तो एक माँ के मन में हमेशा रहता ही है कि एक बच्चा तो मेरा होना ही चाहिए जिसके साथ मैं खेलूं, या जो भी एक जो मातृत्व भाव है उसका वो अतृप्त रह जाता है, तो क्या ऐसी जो माताएं जिनकी संतान नहीं है सचमुच परमात्मा को इस रूप में स्वीकार कर सकती हैं, वो सब चीजें हो पाएंगी?
देखिए बात बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि माता बच्चे चाहती है और बिना बच्चे के उसका आंगन भी सूना सूना रहता है, और जब वो दूसरों के बच्चों को देखती है तो उसे अपने जीवन में एक अभाव महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है, मैंने क्या ऐसे पाप कर लिए जो मैं निसंतान रह गई। कई माताएं ऐसे पाप करती भी हैं, मैं सुना भी सकता हूँ, पर अब मैं ये सुनाऊंगा कि भगवान को अपना बच्चा बनाना है और उस बच्चे की फीलिंग से तृप्त होना है, ताकि बच्चे न होने की जो कमी है वो खले नहीं, वो पूर्ण हो जाए और माँ का जो मातृत्व है वो पूरी तरह तृप्त हो जाए। तो पहले ऐसी माताओं को सोल कॉन्शियस होने का अच्छा अभ्यास करना चाहिए, ताकि बॉडी कॉन्शियसनेस उनका धीरे धीरे ढीला होता जाए, और फिर वो उसको बच्चे रूप में सामने देखें, स्वीकार करें, गोद में ले लें। जैसे किसी दूसरे के बच्चे को एडॉप्ट कर लिया जाता है ना, जो निसंतान माताएं होती हैं दूसरों के बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं वो माता पिता, तो भगवान को बच्चे रूप में देखकर एडॉप्ट कर लें कि आज से तुम हमारे बच्चे, और बिल्कुल उससे वैसा ही व्यवहार करें जैसा एक बच्चे से किया जाता है। तो ऐसे कुछ माताओं के अनुभव हैं हमारे पास, भी गिनती की हैं पर 10 माताएं तो अवश्य होंगी जो इस तरह परमात्मा को अपना बच्चा बनाकर अपने मातृत्व को तृप्त कर रही हैं।
तो विशेष क्या अनुभव है फिर भ्राता जी उन लोगों का, कि मतलब सचमुच क्या ऐसी विपत्तियों के समय में ऐसे जैसे एक पुत्र मदद करता है, सेवा करता है, क्या वही मदद वही सेवा परमात्मा को पुत्र रूप में स्वीकार करने से प्राप्त हो रहा है उन्हें?
देखिए, आजकल कलयुग में तो बच्चे माँ बाप की कहाँ सेवा करते हैं, माँ बाप को बच्चों की केयर करनी पड़ती है बहुत लंबे समय, लेकिन ये बच्चा ऐसा है जो सचमुच केयर करता है। मैंने भी एक बार अनुभव किया था, मैं कहीं बाहर से आया, बहुत थका हुआ था
जी,
तो मैंने कहा क्या करूँ, अब मेरी कमर कोई दबा दे, बहुत दुख की थी, अब कोई था ही नहीं। मैंने कहा बाबा आप बच्चे बन के आज मेरी कमर तुम ही दबा दो, और मुझे फट से फील हुआ, मुझे जैसे नींद सी आ गई और मैंने देखा कोई बच्चा मेरी कमर पर घूम रहा है। मेरी चेतना टूटी और मैं फ्रेश था, तो मुझे आभास हुआ कि सचमुच शिव बाबा बच्चा बनकर मेरी कमर को ठीक कर गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। एक माता को बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसके पति को, वो अकेला था, उसने कहा मैं तो मधुबन जा रही हूँ, तो कहा मेरे पास, कहा शिव बेटे को छोड़ के जा रही हूँ। अब शिव बेटे ने इतनी अच्छी प्रीत की रीत निभाई, उसको हो गया हार्ट अटैक, और कैसे शिव बाबा ने उसको ठीक कराया, ये एक बहुत सुंदर कहानी थी। तो तब उसने मान लिया कि सचमुच शिव सच्चा बेटा है, और वो जैसा नाता निभाता है ऐसा नाता और कोई मनुष्य बेटा भी निभा नहीं सकता
जी,
क्योंकि मनुष्य को बुलाने में आने में देर लगेगी, और ये तो बुलाओ और तुरंत आ जाता है।
कई बार मन में एक द्वंद का भाव उठता है भ्राता जी, कि कहाँ वो परमात्मा है, पूरी सृष्टि के नियंता है, मालिक है, और हम उनसे ऐसे छोटे छोटे कार्य करवा लेते हैं, तो मन में कभी द्वंद होता है कि नहीं, कहाँ वो उनकी हैसियत के हिसाब से कुछ काम कराया जाए।
देखिए, कई बार ऐसा लगता है, प्यार में बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता। जो वो बन ही गया बच्चा, तो माँ तो ऑर्डर देगी ना, पानी लाओ मेरे लिए, वो तो कहेगी ना मेरे सिर दर्द हो रहा, जाओ गोली का प्रबंध करो जल्दी। अब जब वो बेटा बन गया तो फिर वो भगवान नहीं, वो बेटा है, और जिसका वो बेटा बना वो भी बहुत महान है ना। वैसे वैसे का बेटा तो बनेगा नहीं ना, भगवान की माँ भी कैसी होगी
जी।
वो तो बहुत महान
महाभगवती होगी,
पवित्र होगी, रियली भगवती होगी, इसलिए इसमें ये लज्जा की कोई बात नहीं
जी। तो मतलब ये द्वंद न रखा जाए। और वैसे भी जब हम भगवान के लिए कुछ कहते हैं तो आप नहीं कहते, तुम भी नहीं कहते, तू कहते हैं कि तू ऐसा है, तो शायद ये बहुत घनिष्ठ प्यार का ही द्योतक और प्रतीक है, इसलिए शायद इस चीज में द्वंद का भाव नहीं रखना चाहिए। प्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पुत्र के संबंध को भी स्पष्ट करने के लिए, आगे भी इस चर्चा को आपके साथ जारी रखेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत सुंदर लग रहा है परमात्मा के साथ संबंधों की चर्चा को जब हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी कि परमात्मा परमात्मा है, हमें उन्हें याद करना है या उनसे कुछ लेना है, यही शक्तियों की बात हुआ करती थी, लेकिन ऐसी घनिष्ठता, ऐसी समीपता भी उनके साथ हो सकती है। इस पे अब तक विचार हमने नहीं किया था और ना ही इस पे कभी कोई चर्चा हुई थी, लेकिन अब लग रहा है कि सचमुच वो हमारे बहुत नजदीक हैं। और जब ऐसी नजदीकी हो जाती है तो वास्तव में जीवन बहुत आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वैसे भी जब संबंधों में रस होता है तो परिवार में कितना आनंद होता है, वैसे ही परमात्मा से यदि ऐसी समीपता हो जाएगी बहुत आनंद आएगा। और एक विशेष बात जहां से मैंने शुरुआत की थी, परमात्मा की शरण, शरणागत की भारतवर्ष में भी बहुत ज्यादा महत्ता है। जब किसी राजा के पास कोई शरण ले लिया करता था, एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक प्रसंग है। इतिहासकार ये बताते हैं कि राणा हमीर, जो कि रणथंभौर के राणा थे, महाराज थे, तो मोहम्मद शाह भाग करके दिल्ली से आ गया। अलाउद्दीन का वो वजीर था, लेकिन किसी कारण से उसे मौत की सजा दे दी थी अलाउद्दीन ने। अब मोहम्मद शाह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागा, रणथंभौर आ गया, राणा हमीर ने उसे शरण दी। अब अलाउद्दीन को जब पता चला, उसने कहा कि वो भागा हुआ है, उसे मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं रणथंभौर पे आक्रमण कर दूंगा। लेकिन हमारा इतिहास बड़ा ही गौरवमय रहा है, बहुत श्रेष्ठ रहा है। राणा हमीर ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना ये हमारा धर्म है और किसी भी कीमत पे हम इसे वापस नहीं करेंगे। अलाउद्दीन पूरी ही सेना लेकर के आ गए और पूरे ही किले को घेर लिया। मास बीत गए, दो मास बीत गए, अब अंदर का रसद समाप्त हो गया था। अब मोहम्मद शाह ने कहा कि राणा जी, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मैं चला जाता हूँ, आप मुझे सौंप दीजिए। लेकिन राणा हमीर ने कहा कि नहीं, शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है, इसीलिए भले ही हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम आपको शत्रु को नहीं सौंपेंगे। फाइनली सभी, पूरे ही जितने भी राजपूत राजा थे और साथ ही उनके सैनिक थे, उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किया और किले से बाहर निकले और मरते हुए सभी को उन्होंने मारा भी, मरे भी, लेकिन शरणागत की रक्षा अवश्य उन्होंने की। तो इतिहास में भी, हमारे यहाँ की संस्कृति में भी शरणागत की रक्षा करना एक धर्म माना गया है। सोचें, यदि हमने ईश्वर की शरण ले ली तो वो हमारी कितनी रक्षा करेंगे और हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहने देंगे। इसीलिए मन से, बुद्धि से हम उनकी शरण में आएं और सर्व संबंधों का आनंद लेते हुए जीवन को संपूर्णता से जिएं। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में, इस चर्चा को कल आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार।